अपने देह को मैं मानने वाले स्वभाव पर विजय पाना और अपने स्वभाव को जानना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। अर्थात मरने वाले शरीर को मैं मानने की बेवकूफी छोड़कर अपने उस मन और बुद्धि के स्वभाव में बहना छोड़कर उस स्वभाव पर विजय पाकर स्वस्वभाव में जगना बड़ा शौर्य है। शंकर जी के घर में प्रॉब्लम हो गया था, सती जी जा रही माइक के, शिव जी नहीं चाहते थे लेकिन जाना है तो जाओ। फिर शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने क्या तलाक की मांग की अथवा डांटा या रूठ के बैठे, नहीं। शंकर सहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपना हरि स्वभाव दुखों को शोकों को पापों को तापों को और जगत की सत्यता को हरने वाला अपना हरि स्वभाव संभारा, समाधि लग गई। अब तुम्हारे घर में कुछ इधर उधर हो तो तुम काय को फिकर करते हो, शिव जी के घर में भी कभी प्रॉब्लम हो सकते, राम जी के घर में भी हो सकते और कृष्ण का जीवन तो प्रॉब्लमों के बीच ही प्रकटा है और प्रॉब्लमों के साथ ही खेलते खेलते आखिरी यात्रा छलांग मारी, तीर लगा आखिरी में और कृष्ण ने समाधिस्थ होकर शरीर छोड़ दिया। संसार को दुखालय कहते हैं, अगर इसको सच्चा माना तो दुखालय है और भगवान की और अपने आत्मा की ओर देखा तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। चलो फिर भीम और कृष्ण के पास जाते हैं, जंगल में ज्यादा देर उनको नहीं छोड़ेंगे अकेले। नामी सद्गुरों का संग मिल जाए तो तुम्हारे लिए संसार गोपद की नाई पार करना आसान हो जाता है, नहीं तो संसार में कितनी सत्ता बटोर लो, कितना सौंदर्य सजा लो, कितने धन के ऊंचे शिखर पर पहुंच जाओ, अंत में संसार पछाड़ ही देता है। मैंने 8 धनी व्यक्तियों के नाम बताए थे, उनके व्यवसाय बताए के थे कि दुनिया में सबसे अधिक रिचेस्ट पर्सन 8 चुने गए थे। 25 साल के बाद उनका सर्वे किया गया तो कोई दिवालिया हुआ तो किसी को चिंता चिंता में पैरालाइज हो गई और कोई जेल में पड़ा है और राष्ट्रपति का खास कृपा पात्र रिश्तेदार जो रिचर्ड आदि थे वो दिवालिया होकर जेल में पड़ा है। तो 25 वर्ष पूर्व दुनिया में सबसे अधिक धन के ऊंचे शिखर पर बैठने वाला, शेयर मार्केट का, एक्सचेंज मार्केट का सर्वोपरि, स्टील मार्केट का सर्वोपरि सेठ जेल में पड़ा है, फ्रॉड धंधे किए, संपत्ति के अभाव में किसी को पैरालाइज हो गया तो किसी ने सुसाइड किया तो कोई पागल होकर मर गया। 8 की ऐसी कहानी है कि धिक्कार है धन के हम्बार तुझे, धिक्कार है तू दुखों से बचाने के लिए नहीं आया अपितु हमें दुखालय में धकेला। सता तुझे धिक्कार है तू दुखों से बचाकर सुख से न मिला पाई और टेंशन तनाव और दुश्मन बढ़ा है। हे जगत की आसक्त की वासना तुझे धिक्कार है, तूने जगदीश्वर से मिलने में हमें बाधा पहुंचाई। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। दुनिया में कई सज्जन मिले, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उन्होंने हमें मदद की, लेकिन सद्गुरु ने तो घर में घर दिखाकर जगत को नन्ना रोबोट बना दिया। उस सज्जन सद्गुरु के आगे दुनिया भर के सद्गुरुओं की रहमत को कुर्बान कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वम इति उच्यते। जब तुम्हारे शरीर में सब द्वारों के द्वारा, इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा सत्वगुण बढ़ जाए, स्वच्छता आ जाए, तो तुम्हें ठीक ठीक विवेक होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कितना करना है, और परिस्थितियों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। दुख तुम्हें स्वप्न लगेगा, सुख भी स्वप्न लगेगा, और उसके साथ खेलने का तुम्हें अपना आनंद आएगा। तब जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ गया है। उस समय भी सावधानी रखनी है कि अपने को विद्वान, चतुर, सत्ताधीश, संत, महात्मा, योगी, जति, महापुरुष मानकर उस सत्वगुण में रुकना नहीं है। दुख के समय इतना दुख नहीं होगा जो पहले होता था, क्योंकि सत्वगुण दुख से रक्षा करता है। सुख के समय इतना सुख का आकर्षण नहीं रहेगा, क्योंकि सत्व में प्रकाश है। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए, अपने सोहम को पहचान। सत्वगुण से भी पार गुणातीत अवस्था को पहचानने की निगाह देते सतगुरु। उनके बराबरी का कोई सज्जन किसी जन्म में मिला होता तो आज पंच भौतिक शरीर और विकारों के हम गुलाम न होते, निर्विकारी नारायण की मुलाकात करके मुक्त हो जाते। इसलिए सतगुरु को बार बार प्रणाम है। सतगुरु मेरा सुरमा करे, शब्द की चोट मारे, गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। न जाने कई सदियों के भरम संजोए हुए, ये करूंगा तो सुखी होऊंगा। मैं तुम सभी से एक सवाल पूछता हूं। दुनिया के 550 करोड़ लोगों में से कोई एक आदमी ला सकते हो क्या तुम, कि जो कह दे कि मैंने फलाने काम दुख प्राप्ति के लिए किए और फलाना काम आज दुखी होने के लिए कर रहा हूं? एक आदमी 550 करोड़ में से मिल सकता है क्या? जो समझदार है गर्दन हिलाओ, मिलता है तो हाँ की हिलाओ, नहीं मिलता है तो ईमानदारी से ना की गर्दन हिलाओ। एक आदमी मिल सकता है क्या, मैं फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, अथवा मैं अभी जो धी बिगनिंग कर रहा हूँ दुखी होने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा एक आदमी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ईमानदारी से। फिर भी संसार की हालत क्या है? राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, बड़ों को दुख दुनारे कह कबीत, कह कबीत, सुनो भाई साधु, कोई घर नहीं सुनारे। क्या ख्याल है? राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, बड़न को दुख दुनारे कत कबीर, सुनो भाई साधु, कोई घर नहीं सुनारे। किसी को शारीरिक स्वास्थ्य है तो आर्थिक प्रॉब्लम है होगा, आर्थिक प्रॉब्लम नहीं है शारीरिक स्वास्थ्य है तो कौटुंबिक प्रॉब्लम होगा ही। न माने तो झूठ बोलता है, धोखा करता है, जयराम जी की। कुटुंब का प्रॉब्लम नहीं है तो शारीरिक प्रॉब्लम होगा ही, शारीरिक प्रॉब्लम और कुटुंब प्रॉब्लम नहीं तो आर्थिक प्रॉब्लम होगा ही। क्या ख्याल है भांजे? अपने दिल पर हाथ रख के देखो, है कोई घर सुना? हाँ, वो घर सुना मिल सकता है जिसने घर का दावा ही नहीं किया कि ये घर मेरा है, मैं अथवा मैं घर हूं, ये शरीर मैं हूं, ये दावा जिसने नहीं किया, अथवा शरीर मेरा है ये भ्रांति जिसकी नहीं है। स्वभाव विजय शौर्यम को उपलब्ध हो गया, सतगुरु की कृपा को ठीक से जान लिया है, पहचान लिया है, उस महापुरुष को मनुष्य तन में चलता फिरता भगवान कह दो, देवता कह दो, सतगुरु कह दो, मानव जात का परम हितेशी कह दो, नाम तुम्हें जो रखना है रख दो। जब रजोगुण बढ़ता है तो प्रवृत्ति अनेक प्रकार की प्लानिंग आती है खोपड़ी में। प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा क्षमा स्पृहा रजस्यो ज्योति जायते वृद्धे भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जब रजोगुण बढ़ता है तो आदमी का लोभ बढ़ता है, इतना है इतना और पालूं, ये पद है प्रमोशन हो जाए तो और ऐसा हो जाऊं, इतना भोगा है और इतना और कर लूं। प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ कराती है और लालच बढ़ाती है, और अशांति बढ़ाती है, स्प्रिहा बढ़ाती है। ये वृत्तियां रजोगुण से पैदा होती है। जब ऐसी वृत्तियां आए तो सावधान हो जाना चाहिए कि रजोगुण के प्रभाव में हम आखिर कितना बहें। संग्रह की भी कोई लिमिट होनी चाहिए, भोग की भी कोई तो मर्यादा होनी चाहिए, संग्रह की मर्यादा होनी चाहिए, जागतिक परिचय की भी मर्यादा होनी चाहिए। चलो इससे परिचय करो, इससे परिचय करते जिससे परिचय किया जाता है उससे बुद्धू सिंह कब परिचय करोगे? कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। ये साहब काम में आएगा, ये नेता काम में आएगा, ये फलाना काम में आएगा, ये ढींगड़ा काम में आएगा, तो जिससे काम में आएंगे ये समझता है उस परमेश्वर का तो तू गला घोंट रहा है मूर्ख, तू निकम्मा न हो जाए, मौत सारा तेरा निकम्मा न कर दे, सावधान हो जा। सत्संग चेतावनी देता है कि आयुष्य बर्बाद मत कर। बचपन में कितने खिलौने संजोए, कितने मित्र संजोए, कितने साथी संजोए, जवानी में कितने संजोए थे चले आ रहे, लेकिन अपने में से ही तो शत्रु बन जाते हैं, काम आने वाले ही तो काम बिगाड़ने वाला बन जाता है। जितना भरोसा इस जागतिक पर पंच झूठ कपट और दूसरों के सहारे पर करते हो उससे आधी, आधी से भी आधी योग्यता आप हरि को पहचानने में लगाओ तो आपका दीदार करने वाला पुण्यात्मा होने लगेगा, महात्मा होने लगेगा, खुशहाल हो जाएगा, निहाल हो जाएगा। बिल्कुल पक्के अनुभव से कहता हूं, हमें फायदा मिला है, हमें लाभ मिला है और आप लाभ ले सकते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तस्मात् येतानि जायन्ते वृद्धे कुरुनन्दनः। हे कुरुनंदन, जब तमोगुण बढ़ने पर अप्रकाश कुछ सूझता ही नहीं, क्या करे, क्या करनी है कुछ पता नहीं, अब क्या करें, चलो फिर करेंगे, देखा जाएगा। करने के समय काम नहीं करेगा, निर्णय के समय निर्णय ठीक नहीं आएगा, पड़े हैं, न नींद आ रही है न कुछ काम हो रहा है, बस सुस्ती में पड़े, मोह की वृत्तियां पैदा होती है। जरा चलो पी ले हैं, अरे मूर्ख, पीने से अगर दुख मिटता तो सारे शराबी सुखी होते। जयराम जी की, पीने से अगर दुख मिटता तो सारे शराबी निर्दुख होते। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल तुम्हें कमजोर करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर। जो अनादि काल से तेरे साथ था, है और रहेगा, उस हरि के ज्ञान को सुन ले, उस हरि से प्रीति करने की रीति जान ले और उस हरि के सुख को, सामर्थ्य को अपना सुख सामर्थ्य का स्रोत बना दे। बस गांधी जी जिनको मत्था टेक कर सत्संग सुनते थे, वे शरणानंद महाराज, उनको किसी ने कहा कि बाबा तुम्हारे सत्संग में इतना सारा खर्च होता है, इतना पैसा अगर गरीबों की सेवा में लग जाए। बाबा ने कहा, सारी दुनिया लुटाकर भी सत्संग मिल जाता है तो इससे सत्संगियों से जो गरीबों की सेवा होगी उसका कोई माप तोल नहीं है, और सत्संग छोड़कर जो सेवा के नाटक होंगे उस ढोंग का भी कोई अंत नहीं होगा। अखबारों में तो बड़े बड़े प्रचार आते कि इतनी सेवा हो गई गरीबों की, इतनी हो गई, लेकिन जितने ऑफिसर सत्संगी होंगे, ईमानदार होंगे, उतना हिस्सा ही सचमुच में सेवा कर पाएंगे। सेठ लोग, साधु लोग, जितने जितने सात्विक होंगे उतनी सचमुच में सेवा होगी, नहीं तो सेवा का नाटक तो बहुत होता है। कई ऐसी संस्थाएं विदेशों से पैसे उगरा के न जाने कितना कितना सेवा का नाटक दिखाती। भारत दरिद्र है, छटांग भर दूध, पाव भर दूध की चाय बांटते बांटते फिल्म उतार ली, विदेशों से करोड़ों रुपए लाए, फिर धर्मांतरण के काम में लगा दिया, हमारे देश के गरीबों को लेकर देश को बदनाम किया और भीख मांगे हमारे देश के नाम की, और हमारे देश के गरीबों को थोड़ा दिया और उन्हीं गरीबों को और अमीरों के बच्चों को थोड़ा पढ़ा लिखा के धर्मांतरण कर दिया, और फिर हमारे देश के टुकड़े करने के इरादे कर रहे हैं। क्या ये सेवा है कि देशद्रोह का कार्य है? जयराम जी की सेवा तो सच्चाई से ही होती है भाई साहब। तो जो सच्चाई है, शरणानंद ने कहा, जो सच्चाई है वो सत्संग से ही उभरेगी। इसलिए दुनिया की सारी संपदा लुटाने पर भी आत्मज्ञान का सत्संग मिलता है तो हमें कर लेना चाहिए। इसी से दुनियादारों का और समाज का मंगल है, गरीबों और अमीरों का, सभी का मंगल है। देश में रोटी पानी की इतनी चिंता नहीं, अपितु जिनके पास जो है उसका सदुपयोग कैसे हो इसकी चिंता करनी चाहिए। बुद्धि का सदुपयोग कैसे हो, मन का सदुपयोग कैसे हो, जीवन का सदुपयोग कैसे हो, वस्तुओं का सदुपयोग कैसे हो, ताकि सत सुख को पाए, सत आनंद को पाए और सत जीवन को पाए। असत जीवन में तो तबाही हो रही है। तो ये तमोगुण है जो न करने जैसा करवाता है और कुछ पता नहीं चलता। तो इस प्रकार शराब की, कबाब की अथवा कोई गंदी आदत पड़ गई, अब अपने में मान लिया और मेरे से नहीं छूटेगी तो नहीं छूटेगी। आप लाचार हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, परिस्थितियों के गुलाम बन जाओगे। लेकिन ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण गुणों में है, उनसे न्यारा मेरा हरि उनको देखने वाला है। कभी कभी अच्छे विचार भी तो आते हैं बुरे आदमियों को, कभी कभी अच्छे काम भी तो कर लेते हो, और अच्छे लोग कभी कभी बुरे भी तो कर लेते हैं। तो कभी सत्वगुण बढ़ता है, कभी रजो बढ़ता है, कभी तमो बढ़ता है। तो ये मनुष्य जीवन में तमो को, रजो को दबाकर सत्व की प्रधानता लाओ और फिर सत्व का सदुपयोग करके छलांग मार के हरि से हाथ मिलाकर मुक्त हो जाओ। ये योग्यता केवल मनुष्य जीवन में है। इसलिए बोलते हैं कि इतनी सारी कठिनाइयां और जिम्मेदारियां सहकर भी मनुष्य शरीर में जीना उचित है। अगर इस योग्यता का फायदा नहीं उठाते तो हमें तुरंत पशु हो जाना चाहिए। नो इनकम टैक्स टेंशन, नो सेल टैक्स टेंशन, नो सरचार्ज, नो बेबी बॉयज मैरिज टेंशन। यहाँ तो सिंगल करना है तो 10 जगह देखना पड़ता है, डबल करना है तो खास जगह पर ही जाके रहना पड़ता है। वहाँ तो बैल बने, सिंगल भी करते जाओ, डबल भी करते जाओ, बेटा बेटियों की शादी भी होती जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई फिकर नहीं। लेकिन ये सारे फिकर और टेंशन स्वीकार करके भी हम मनुष्य जीवन चाहते हैं। देवलोक से भी लोग आते हैं मनुष्य तन में, कि वहाँ तो भोग भोग कर पुण्य क्षय होते, लेकिन यहाँ योग करके, पापों का क्षय करके, अज्ञान का क्षय करके ईश्वर की मुलाकात होती है। इसलिए देवता लोग भी लालायित होते मनुष्य जीवन पाने के लिए। शुक्रदेव जी ने कथा का आरंभ किया, इतने में स्वर्ग से देवता आए और अमृत का कलश में से हम तुम्हारे परीक्षित को अमृत पान करा देते हैं, स्वर्ग का लाभ उसे मिलेगा और हमें आप ब्रह्म ज्ञान के भागवत अमृत का पान कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, तुम सौदेबाजी से संत से प्रसाद लेना चाहते हो, ये बनियागिरी से ना। स्वर्ग का अमृत पीने से धीरे धीरे आदमी भोगी और पुण्य क्षीण करके गिरता है, और सत्संग का अमृत पीकर धीरे धीरे आदमी योगी होता और पाप नष्ट होने लगते। स्वर्ग के अमृत से अप्सराएं मिलती और सत्संग के अमृत से अपना आपा हरि का ज्ञान होता है। स्वर्ग के अमृत की और सत्संग अमृत की तुम तुलना कैसे कर रहे हो? ये तौहीन है, अपमान है सत्संग का, तुम पात्र नहीं हो। कुछ लोग सत्संग में आकर अपने पद प्रतिष्ठा का परिचय देना चाहते, बड़ा घाटे का धंधा करते। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, ऐसे हरि के साथ खेलने वाले संतों के आगे अपने टाइटल दिखाकर बड़ा बनने की कोशिश करना बहुत छोटे दिमाग का परिचय है। जयराम जी की हकीकत में सारे ब्रह्मांड का स्वामी जिनका यार बना बैठा उनके आगे तुम्हारे इस कल्पित पदों की प्रतिष्ठाओं की कीमत ही कुछ नहीं है। ये तो तुमने मान रखी है कि मैं फलाना हूँ। वास्तविक में तुम क्या हो उसको महात्मा जानते। अगर तुम आत्मा के रास्ते और सचमुच धर्म के रास्ते तो तुम क्या हो महात्मा उसका आदर करते हैं। अगर तुम देह को मैं मानकर कुछ बने हो तो महात्मा उसको नालत करते हैं। एक युवराज किसी महात्मा के पास गया घोड़े पे बैठे बैठे, महाराज जरा पानी पिला देना। दयालु महात्मा ने पानी पिला दिया। बोले महाराज मेरे को पहचान गए ना, मैं युवराज हूँ। हाँ बोले मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे, महाराज आपने पहली बार देखा है। अरे बोले मूर्ख, एक पानी की बूंद से तेरी धी बिगनिंग हुई थी और मुट्ठी भर राख में तेरा धी एंड होगा। बीच का तेरा बाप भी नहीं संभाल सकता और दादा भी नहीं संभाल सकता है, रवाना हो जाए यहाँ से। महात्मा ऐसे ऐसे होते क्या बताऊं आपको। संत किन्नारा, अफगानिस्तान जाना हुआ, शाहजहां को पता चला, हरि तत्व में जगे हुए महात्मा आए, उनका बड़ा आदर किया। फिर धीरे से कहा कि महात्मन, यहां के किले का राजा मैं, उससे कैसे युद्ध में फते हूं और आपकी दुआ चाहता हूं। महात्मा ने कहा फिर युद्ध करके कई स्त्रियों के सुहाग, कई बच्चों के माँ बाप छीनने का पाप क्यों करे, भगवान करेगा कुछ रास्ता निकलेगा, बिना युद्ध के तेरे को राज मिल जाएगा। ये महापुरुषों के पास होता कुछ नहीं और पल भर में न जाने क्या दे डालने की ताकत रखते। भूख लगने पर भिक्षा मांग कर खा लेते हैं और मौज आने पर पलक भर में राज्य का दान करने की ताकत रखते। किन्नाराम बाबा ने कहा चलो मिल जाएगा। थोड़े दिनों में शाहजहां के साथ उसका मंत्री मिल गया और बूढ़े राजा की ऐसी तैसी करके शाहजहां को राज तिलक हो गया। शाहजहां ने महात्मा की दुआ का चमत्कार और देखा, पहले भी थोड़ा परिचय मिला था। जब हिंदुस्तान आया, और महात्मा तो थोड़े दिन घूमकर हिंदुस्तान आ ही गए थे, काशी में उनका अभी भी आश्रम है। किन्नाराम महाराज तुलसीदास के समकालीन, 170 साल जिए थे। किन्नाराम का सम्मान समारंभ रखा गया आगरे में और वो ही नाच गान और अपनी हूरे और परियां महात्मा के सामने आए। आधा बरस महाराज आपका स्वागत, ये वो। ये सारी तिकड़मबाजी देखते देखते आखिर महात्मा ने कहा कि ये तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। प्रजा का पैसा है, प्रजा की सेवा में लगाओ, सड़कें ठीक करवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, प्याऊ बनवाओ, कुएं खुदवाओ, कुछ ईश्वर की अल्लाह की रहमत के लिए चार दिन की जिंदगी इसका सदुपयोग करके फिर सत्संग में आओ। मेरा ये बहुमान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो। इन चीजों से जिनको हम ठुकरा कर दुनियादार जहां सिर पटकते हैं वहां फकीर कदम रखते हैं, तो कैसी बेवकूफी करता है। मंत्रियों के आगे किसी सम्राट को बेवकूफ कहना कम खतरा नहीं, और वो बात को पचा लेना भी सम्राट की कम बुद्धिमानी नहीं है, और न पचाना कम नालायकी नहीं। शाहजहां ने कहा महाराज आप फकीर हैं और हम राजा हैं, हमारे यहां तो ऐसे ही होता है। हमने तो आपकी इज्जत करने के लिए किया था। हो गया, इस राज्यपाट का मद चढ़ गया तुझे, अपने को क्या मान रखा है, क्या तेरे को कोई कहने वाला नहीं, सारे चाटुकारों के बीच तू अंधा हो जा रहा है। तेरी इस उदंडता का तुझे हम दंड देंगे। राजा को दंड देंगे फकीर, तू इसी आगरा में कैद में सड़ेगा। दुनिया जानती है कि शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा ही आगरा के कैद में सड़ा हुआ जीवन बिताया। हरी समझ जग कछु वस्तु नहीं, आप ईश्वर के साथ मिलकर जिए फिर प्रकृति आपकी सहचारिणी हो जाएगी और परमात्मा भी आपके सहसाथी होकर आनंद विभोर हो जाएंगे। अहमद ऐसा मुसलमान, दिलबर मुसलमान, धन्यवाद ऐसे मुसलमान को, हिंदू साधुओं के प्रति भी आदर रखता था, नेरो माइंड नहीं था। कृष्ण की भक्ति मिली और कृष्ण आनंद मूर्ति है, प्रेमा अवतार है। कृष्ण से प्रेम करते करते उसकी ऐसी तो जिंदगी निखरी कि एक बार सर्दियों में अहमद हाथ गरम कर रहा था आग जलाकर, तो जिसमें छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े थे उस ठंडी हवाओं से बचने के लिए उस टोकरी को अपने सिर पर ओढ़ दिया। कृष्ण को अपने प्यारे भक्त के साथ दिल लगी करने की सूझी। कृष्ण एक ब्राह्मण युवक का रूप लेकर आया, क्यों रे अहमद कैसा टोपा हो रहा है? अहमद चौकन्ने हो गए कि क्यों रे अहमद कहने वाला ये ब्राह्मण का बच्चा कौन है? गौर से देखा कि हाँ, ब्राह्मण का बच्चा नहीं तो ब्राह्मणों के बाप का बाप, बाप का बाप और सबके आदि हैं। लेकिन ये आए रूप बदल के तो अपन भी करो टोन बदल के बात। बोले टोपा अहमद का टोपा ब्राह्मण तू खरीदेगा? बोले हाँ, क्या कीमत है? बोले तुम्हारे पास है भी क्या? बोले जो मांगो वो मिल सकता है, टोपा बेचोगे? बोले क्या क्या दोगे बताओ। बोले तुम जो मांगो, बोले तुम्हारे पास देने को है क्या? बोले कितना पैसा, कितनी अशरफियां, बोलोगी तो? अरे बोले भाई तुम खरीदार ही नहीं हो, तुम्हारे पास है क्या? अहमद का टोपा खरीदने की तुम्हारे पास क्या ताकत? अहमद जान गया कि कृष्ण है, देख लो, जान गया कि अल्लाह ताला खुदा खुद है, और कहता कि तुम्हारे पास ताकत क्या है कि फकीर का टोपा खरीदने की हिम्मत कर रहे हो? बोले मैं क्या नहीं दे सकता हूँ अहमद, तू समझ तो गया है कि वे मैं पहचान गया हजूर, मैं पहचान गया, इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है खरीदने के लिए? एक तो ये लोक और दूसरा परलोक, दोनों लोक लुटाने पर अहमद का टोपा नहीं बिकता है, समझे जनाब? क्या मोहब्बत में ताकत है। कृष्ण कहते हैं कि अहमद हम तो लोगों को कह देंगे कि अहमद बड़ा अभिमानी है। बोले जी चुप रहो, धौंस मत दो, अब हमारे पास भी तुम्हारी वीक पॉइंट खूब है। अच्छा तो तुम क्या कर दोगे? तो बोले तुम कह के देखो फिर हम क्या करते। नहीं नहीं जरा बता तो दो कि हम लोगों को बताएंगे कि कृष्ण केवल पुजारियों के मंदिर में नहीं, हर दिल को कर्षित आकर्षित करने वाला आत्मा परमात्मा कृष्ण है, फिर तुम्हारे पुजारियों का धंधा क्या होगा? अमुल्ला मुल्लियों की रोजी रोटी चल रही है, हमारी चुप है, नहीं तो हम खोल के तुम्हारा रहस्य बता देने तो ये दुकानदारियां कम हो जाएगी। धर्म खतरे में, इस्लाम खतरे में, खतरे में तो कुर्सियां और अहंकार और खोपड़ियां खतरे में होती है। धर्म इतना कमजोर है जो खतरे में हो जाए, इस्लाम इतना कमजोर है जो खतरे में हो जाए किसी व्यक्तियों के कारण। कृष्ण ने कहा कि अहमद तेरी और मेरी मुलाकात ये भक्ति प्रेमा भक्ति की मुलाकात, इसका चिंतन और श्रवण करने वाले भी मुझे अपने आत्म रूप में जानने में उत्साहित होंगे, और तेरे जैसे फकीरों के पीछे तो हम कभी क्या क्या रूप लेकर घूमते रहते, लोगों को पता चलेगा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जो सच्चा सुख, सच्चा जीवन, निर्दुख जीवन फकीरों के सत्संग के बिना नहीं मिलता। एक मिलियन क्या है, एक करोड़ मिलियन भी हो जाए आप निर्दुख नहीं हो सकते। एक राज्य की सत्ता नहीं पूरे देश की सत्ता, और पूरे देश की सत्ता नहीं पूरे विश्व की सत्ता और सौंदर्य एक आदमी को मिल जाए निर्दुख नहीं हो सकता है। निर्दुख होना है तो जो दुखों को हरने का आत्म स्वभाव है उस स्वभाव में आना पड़ेगा। उस स्वभाव की स्मृति दिलाने के लिए जो शास्त्र है और पर्व है, उन पर्व और शास्त्रों का जो मूर्धन्य महापुरुष है, उन महापुरुष का नाम है व्यास जी। व्यास जी निर्दुख होने के उपाय बताते हैं। कोई भी आदमी सदा के लिए निर्दुख हो सकता है, 20 नियम समझ ले, उसका पालन करे। आज तक किसी ने दुखी होने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया दुखी है। कि निर्दुख होना है तो ये 20 साधन समझ लो, उसको आचरण में ले आओ, आप धीरे धीरे सदा के लिए निर्दुख होने का एहसास करोगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी।